राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना, यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना, यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना, यमुनातीरावनचारी, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र चतस्सी श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र चतस्सी श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories and glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आज का भागवत कक्षा हिंदी में होगा। मैं इसका जो श्लोक है और उसका अनुवाद और तात्पर्य मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम हिंदी में चर्चा करेंगे। ग्यारहवा स्कंद आठवां अध्याय 44 श्लोक। आशा ही परमं दुःखं निराशं परमं सुखं यता संचिध्य कांतास्यां सुखं स्वरूप पिंगला। आशा ही परमं दुःखं निराशं परमं सुखं यता संचिध्य कांतास्यां सुखं स्वरूप पिंगला। आशा ही परमं दुःखं निराशं परमं सुखं यता संचिध्य कांतास्यां सुखं सस्वाप पिंगलम्। और कोई माता जी वर्ड टू वर्ड मीन आशा मेटीरियल डिजायर ही सर्टनली परमम द ग्रेटेस्ट दुखम अनहैप्पीनेस निराशा फ्रीडम फ्रॉम मेटीरियल डिजायर्स परमम द ग्रेटेस्ट सुखम happiness yatha in that way sanchindhya completely cutting off kanta for lovers asham the desire sukham happily suswapa she slept pingala the former prostitute pingala. Translation: material desire is undoubtedly the cause for greatest unhappiness. The freedom for such desire is the cause of greatest happiness. Therefore, completely cutting off her desire to enjoy so-called lovers, Pingala very happily went to sleep. तो इधर बताते हैं, अनुवाद है कि हमारे जो भौतिक इच्छाएं हैं वो हमारे अनंत दुख का कारण है। जो वो इच्छाओं को त्याग देते हैं वो हमारा सुख का कारण होता है। इस प्रकार से पिंगला ने अपने जो प्रेमियों के प्रति उसने सारे बंधनों को तोड़ दिया और बहुत ही प्रशांत शांति के साथ सो गई। तो इसका तात्पर्य नहीं है, लेकिन इसी पिंगला के बारे में गोपियाँ अपना गोपी गीत में गाते हैं, तो उसमें भी इसके बारे में बताया है कि तो हम उसमें तात्पर्य में पढ़ेंगे। पहले ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామిని నమస్తే సరస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానోసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధూభ్య ఏవ చ అతీతానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ. తో ఇదర్ కిస్ ప్రకార్ సే హమారే ఆశ హమారే దుఃఖ కారణ హై వో బతాతే హై. తో యే స్టేజ్ మే పహుంచనే కే లియే మత్లబ్ కి సమజనా కి హమారా జో ఆశ హై హమారా దుఃఖ కారణ హై ఇస్కో సమజనా ఇత్నా ఆసన్ నహీ హై క్యోంకి హమ్కో జనరలీ లగ్తా హై కి మేరా జబ్ ఇచ్ఛా పూర్ణ హోతా హై తో మే సుఖీ హో జాఊంగా. లేకిన్ ఇదర్ పింగళా బోల్తే హై కి ఆప్కా జో ఇచ్ఛా హై వోహీ ఆప్కా దుఃఖ కా కారణ హై. తో ఇస్కో కైసే సమజనా చాహియే కి హమారే ఆశా హమారా దుఃఖ కా కారణ హై వో హమ్ భగవద్గీత కా ఏక్ శ్లోక్ సే సమజ్ సక్తే హై. క్యోంకి యే ఓర్ స్టేజ్ మే కైసే పహుంచనా హై కి మే మేరా ఇచ్ఛా మేరా దుఃఖ కా కారణ హై ఉస్ స్టేజ్ కో సమజ్నే కే లియే కుచ్ ప్రాక్టీస్ లగ్తా హై పెహలే. వో ప్రాక్టీస్ కరెంగే తో సమజ్ జాయెంగే అరే యే తో మత్లబ్ జో వ్యక్తి ఇచ్ఛా కో ఛోడ్ దేతా హై వో ఏక్దమ్ ఆరామ్ సే సుఖీ రహ సక్తా హై. తో ఇస్కా కనెక్షన్ కహాన్ సే హై తో భగవద్గీత కా చౌథా అధ్యాయ తీస్వా శ్లోక్ మే కృష్ణ ఏక్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక్ బోల్తే హై. తో ఉస్కా ఔర్ ये श्लोक है चौथा अध्याय तीसवा श्लोक बोलते हैं कि सर्वे पि एतद् यज्ञ विदो यज्ञ क्षिपत कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन. बोलते हैं यज्ञ करने से तीन बेनिफिट होता है. पहला है आपको कर्म से मुक्त हो जाएंगे, दूसरा है आप आनंद में रहेंगे, और तीसरा है आप यान्ति ब्रह्म सनातन भगवद्धाम चले जाएंगे. तो उससे पहले ये जो यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, दो चीज़ें, एक हमारा इच्छा पूर्ण करना, दूसरा है हमारा इच्छा को त्यागना मतलब सैक्रिफाइस करना. तो जनरली हमारा अभी का सिचुएशन कैसा है, हम बहुत बंधन में हैं. सो कैसे बंधन में हैं, क्योंकि हम कर्म के बंधन में हैं. तो इसको बोलते हैं हम लोग अलग अलग कारणों के वजह से इधर बंधन में हैं. जनरली सभी को फ्रीडम चाहिए, वो अच्छा लगता है फ्रीडम, लेकिन कैसे इतना हमारा स्टेट, इट इज़ वेरी लैमेंटेबल सिचुएशन. लैमेंटेबल सिचुएशन क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुत ही शोक दर्दनाक शोकग्रस्त स्थिति में हम लोग. तो कैसे, मतलब अभी गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाया कि ऐसा रूल पालन करना है, ऐसा रूल पालन. गवर्नमेंट क्या करता है, कंट्रोल करने का प्रयास करता है. तो बाहर से हम लोग कंट्रोल में हैं, लेकिन अंदर से भी कंट्रोल्ड में हैं हम लोग. कैसे कंट्रोल्ड में हैं, हमारे कर्म के वजह से कंट्रोल्ड में हैं. हमारा कर्म क्या करता है, हमको कंट्रोल कर देता है. हम लोग इतना ही कर सकते हैं, ऐसा ही कर सकते हैं, ऐसा ही कर सकते हैं, और ज़्यादा कर नहीं सकते. कर्म क्या करता है, अंदर धूह हमारे अंदर कलमश पैदा करता है, मतलब इम्प्योरिटी आता है अंदर हमारे अंदर. जब इम्प्योरिटी आता है, दूषित हो जाते हैं, उसके वजह से दुख होता है। मतलब अभी देखिए, मेरा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, कुछ मतलब उसके अंदर क्या है, कुछ इम्प्योरिटी है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन जब माइंड में इम्प्योरिटी होता है तो क्या होता है, दुख होता है। समझा? मतलब शरीर में प्रॉब्लम होता है तो बीमारी आता है, माइंड में प्रॉब्लम होता है तो दुख होता है। तो माइंड के अंदर मतलब दुख का क्या कारण है, हमारे मन के अंदर जो दूषण है उसके वजह से हम दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है वो कभी दुखी होता ही नहीं है। दुख का कारण क्या है, हमारे अंदर प्रॉब्लम है, काम क्रोध लोभ है, ये हमारे अंदर जो इम्प्योरिटी है वो हमारा दुख का कारण है। उसको जो व्यक्ति क्लीन कर देगा तो चेतो दर्पण माजनम, सुबह उठ के हम क्लीन करते हैं तो सुखी हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, किधर है? सो जो स्लेवरी क्या बोलते हैं, गुलामी, गुलामी किधर है? बाहर नहीं है, हमारा अंदर गुलामी है। तो जब हम कर्म करते हैं तो दूषण क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा हृदय का जो जमीन है, जमीन में बीज डालते हैं तो उगता है, लेकिन हमारा हृदय अभी अंधकार में है। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं अंधकार में, हम लोग क्या कर रहे हैं, नया नया और उगा रहे हैं, हमारा कर्म को और बढ़ा रहे हैं, उसके वजह से और फंस जाएंगे। तो जनरली हमको लगता है कि मैं करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन और करने से क्या हो रहा है, और फंस रहे हैं। समझ रहे? और करने से और फंस जाएंगे। हमको बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो ऋषि मुनि लोग बहुत रिसर्च करके और कृष्ण का कृपा से एक साइंटिफिक मेथड क्रिएट किया, कैसे बंधन से छुटकारा पाना का, कैसे शांति से रहने के लिए। तो वो एक्चुअली सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं, तो उसको सेक्रीफाइस बोलते हैं। वो बहुत साइंटिफिक सिस्टम है। वो एक्चुअली किसी और सिचुएशन में नहीं, कृष्ण हमको बाहर निकालने के लिए, कर्म बंधन से, ये गुलामी से बाहर निकालने के लिए इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट करके दिया हमको। बहुत साइंटिफिक सिस्टम है, थोड़ा इसको समझने से ही हम बाहर निकल सकते हैं, वैसे कृष्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं यज्ञ क्षिपत कल्मश। तो उसमें बोलते हैं कि हू नोज द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस, उसको समझना चाहिए पहले। तो क्या बताते हैं पहले कि हम कैसे गुलामी में हैं। छोटा हम कार्य करते हैं उसका रिएक्शन मल्टीपल होता है। अभी मैं किसी को गाली दिया, वो बहुत ही दुखी हो गया, और वो दुखी होने के कारण उसका रिएक्शन मुझे मिलेगा, लेकिन इतना आसान से, इतना कम नहीं मिलेगा। अभी वो दुखी होके किसी और को जाके गाली दिया, मेरे वजह से उस दुखी हुआ और जाके किसी और को गाली दिया, तो उसका रिएक्शन किसको मिलेगा, थोड़ा पार्ट मुझे मिलेगा। और वो तीसरा व्यक्ति जाके किसी और को किया, उसका थोड़ा पार्ट मुझे मिला, क्योंकि मेरा पहले इग्नाइट किया ना। तो वो इतना बड़बड़ के, इतना भर के हमको कर्म आता है। कर्म इतना एक छोटा नहीं, ऐसा मारा तो मारा नहीं, वो व्यक्ति जिसको आपने, हमने किसी को तंग दिया, उसने कितना लोगों को किया, वो पूरा हमको ही आने वाला है। कभी कभी कैसे होता है कि बहुत बुरा काम होता है, किसी छोटे बच्चों को एब्यूज करते हैं, तो उसको मारना और कुछ अलग अलग चीज़ करते हैं, वो बच्चा उसके वजह से इफेक्ट होके बड़ा होने के बाद किसी और को वो कुछ काम किया, तो पहला व्यक्ति जिसने किया ना, उसको वो जीवन भर, और वो कितना लोगों को करेगा, वो लोग जाके कितना लोग करे, वो चेन रिएक्शन है। कर्म ऐसा होता है। तो कितना हम फंसते हैं, किसी को कुछ जोर से कुछ बोला तो भी फंस जाएंगे हम लोग, ये एक्चुअली कर्म का सिस्टम है। तो बचना कैसे, तो इसलिए हमको ये सिस्टम दिया भगवान ने। तो हमारे जो मन में है बहुत सारा इच्छा है, और उसको पूर्ण करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये जमीन में अंधकार में बीज डाल रहे हैं और फंस रहे हैं। अभी यज्ञ का सिस्टम, यज्ञ का क्या आता है, जनरली हम यज्ञ बोलते हैं तो क्या याद आता है, एक यज्ञ कुंड याद आता है हमारा, और उसमें क्या डालते हैं, पहले क्या क्या रहते हैं, यज्ञ में आग लगता है, फिर क्या डालते हैं उसमें, बीज डालते हैं और घी डालते हैं। अभी आग क्या है, आग क्या है, ज्ञान है। आग का क्या गुण है, कभी भी ऊपर जाता है, कितना भी हवा हो ऊपर जाता है। उसी प्रकार ज्ञान हमको क्या करता है, ऊपर लेके जाता है। तो हमको क्या ज्ञान चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। बाहर का कितना भी पीएचडी करो, वो मरने के बाद कुछ आएगा नहीं उसके साथ। अगले जन्म में, पिछले जन्म में 10 PhD किया, अभी कुछ काम आएगा? क्या बोलेंगे, बेटा अभी स्कूल जाओ तुम भी। तो कुछ काम का नहीं है, मतलब हम लोग फंसे ही रहेंगे। तो बाहर का कुछ ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है। सही ज्ञान क्या है? भागवत है। तो क्या हम लोग, जब आध्यात्मिक ज्ञान कैसे आएगा? जो बीज है वो क्या है? हमारा कर्म है। अभी हमको और कर्म का रिएक्शन नहीं चाहिए, बहुत करके आए, उसका रिएक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग? यज्ञ में डाल रहे हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, हम बीज यज्ञ में डालते हैं तो क्या होता है, जल जाता है। तो इसी प्रकार हमारा कर्म भी, जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में बीज डालते हैं, तो हम बोलते हैं हमको ये कर्म का रिएक्शन नहीं चाहिए, उसको जला दो। हम जला हुआ बीज को जमीन में डालेंगे तो उसका फसल नहीं होगा। तो उसी प्रकार हमारा कर्म भी जल जाता है। तो ये एक्चुअली, और उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, और आग और क्या होगा, और बढ़ेगा। तो हमारा और ज्ञान बढ़ेगा जब हम कर्म का सेक्रीफाइस करते हैं, और ज्ञान बढ़ेगा। और एक इंग्रेडिएंट है इसमें, वो क्या है? घी। तो घी कौन डालते हैं? पुरोहित, ब्राह्मण डालते हैं। तो और घी का क्या गुण है? वो डायरेक्टली जल जाता है, उसका कुछ राग भी नहीं बनता, बहुत जोर से जलता है, मतलब आग और बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है घी। घी क्या होता है? हमारा भक्ति। जब हम यज्ञ में हमारा भाव के साथ जब करते हैं, वो क्या होता है? भक्ति। मतलब हमको गाइड करने वाला जो ब्राह्मण है, गुरु जैसा, गुरु क्या करते हैं हमको, उनको पता है क्या करना है और हमको किस दिशा में लेके जाना है। तो गुरु हमारे तरफ से क्या डालते हैं? हमारा भक्ति को भगवान के चरणों में डालते हैं। उससे क्या होता है? हमारा और भी ज्ञान बढ़ेगा। तो हम क्या कर्म करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी बोलेंगे मेरा पूरा कर्म लेके मैं आग में डाल दूंगा, छोटा आग है, आपने गोनी भरकर उसमें बीज डाला तो क्या होगा, वो बुझ जाएगा। तो उसी प्रकार हम अभी जो कर्म करते हैं उसको भी ध्यानपूर्वक करना चाहिए। बहुत बड़ा गलती किया तो जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वो भी चला जाता है। इसलिए लोग आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उसका जो बीज है बहुत ज़्यादा डाल दिया। इसलिए हम अभी जो है, अभी बहुत ध्यानपूर्वक थोड़ा थोड़ा गड़बड़ नहीं करके हम करते जाएंगे तो थोड़ा 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 बीज डाल के उसको और बढ़ा सकते हैं। लेकिन घी बहुत इंपॉर्टेंट है। घी क्या है? हमारा भक्ति का भाव है। अभी बोलेंगे हम लोग यज्ञ करेंगे हमारा कर्म को मिटाने के लिए, लेकिन कुछ लोग यज्ञ करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, वो कैसे? हम बोलेंगे ठीक है हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा कर्म निकाल दो, हम यज्ञ करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई बच्चा के लिए करता है, कोई राज्य के लिए करता है, कोई इलेक्शन में जीतने के लिए करते हैं, तो वो लोग भी यज्ञ करते हैं। वो क्या होता है, उससे क्या होता है कि हमारा जो कर्म है वो हमको कुछ पोजीशन जाने के लिए रोकता है। मतलब किसी को कुछ योग्यता नहीं है, वो कर्म उसको रोकता है, लेकिन हम यज्ञ करते हैं तो वो पूरा कर्म चला जाता है और अच्छा कर्म आता है, इसलिए उसका इच्छा पूर्ण हो जाता है। लेकिन वो हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब घी डालते हैं, हमारा भाव के साथ डालते हैं, तो वो हमारा डिवोशन है। अभी जो यज्ञ है वो प्रेम के साथ आना चाहिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सैक्रिफाइस अल्टीमेटली विल गिव अस डिवोशन। जब हम डिवोशन मतलब प्रेम, मतलब अभी किसी व्यक्ति के साथ हम प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं, प्रेम किसी व्यक्ति के साथ कोई करता है तो क्या करता है, वो सेवा करते हैं। तो मतलब जो भक्ति है, भक्ति मतलब सेवा करने का, मतलब जो प्रेम है वो सेवा करने का, मतलब अपना समय को, अपना एनर्जी को उसको व्यक्ति को देते हैं हम लोग, तो वो एक्चुअली प्रेम होता है कि हम सैक्रिफाइस करते हैं। भौतिक दुनिया में कुछ प्रेम नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। मतलब कुछ रियल प्रेम मतलब वो कृष्ण के भक्तों के साथ ही हो सकता है, मतलब कृष्ण के साथ और उनके भक्त के साथ जब हम कुछ आदान प्रदान करते हैं उसमें एक्चुअली प्रेम होता है। तो स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, मतलब देने का भाव होना चाहिए। मतलब कृष्ण के प्रति हमको प्रेम है तो हमको देने के लिए हमको इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हमारा समय दे सकते हैं, हमारा सब कुछ दे सकते हैं। अभी क्या लगता है हम पकड़ के रखते हैं, नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं है भगवान के साथ। लेकिन जब व्यक्ति को प्रेम हो जाता है तो पूरा दे देता है, लेकिन बाहर लोग सब कुछ दे देते हैं किसी और को, डूब जाते हैं। कृष्ण को देगा तो डूबेंगे नहीं, क्योंकि लेकिन कृष्ण बोलते ठीक है अभी प्रेम नहीं है, फिर भी आप स्टार्ट करो मुझे देना, धीरे धीरे प्रेम आ जाएगा। तो सेक्रीफाइस मतलब हमारा इच्छा को छोड़ना एक्चुअली। तो ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, पहले कृष्ण बोलते हैं ठीक है अभी अपना ड्यूटी करो, लेकिन ड्यूटी कैसे करना चाहिए, सैक्रिफाइस यज्ञ के रूप में करना चाहिए बोलते हैं। यज्ञ के रूप में ड्यूटी कैसे करेंगे, तो मतलब कृष्ण के लिए जब करते हैं हमारा ड्यूटी वो यज्ञ होता है, नहीं तो वो यज्ञ नहीं होता है। अभी लोगों को, अभी हस्बैंड को पता है कि वाइफ का क्या ड्यूटी है, परफेक्टली पता है, और वाइफ को भी परफेक्टली पता है हस्बैंड का क्या ड्यूटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वाइफ हस्बैंड का उनका ड्यूटी नहीं पता रहेगा और वाइफ को उनका ड्यूटी पता नहीं रहता है, मतलब क्या करना चाहिए। लेकिन लोगों का दूसरा का ड्यूटी अच्छा पता था, लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अपना ड्यूटी पहले करो अच्छे से। किस प्रकार से करना चाहिए, यज्ञ के रूप में करना चाहिए, मतलब मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। जब हम इस भाव में करते हैं तुरंत हमारा जो कार्य है उसको रिएक्शन नहीं रहता। जब हम भाव के साथ करेंगे कि ये मेरे लिए नहीं है मैं कृष्ण के लिए करता हूँ, तो तुरंत उसमें रिएक्शन नहीं है। लेकिन जब हम स्वार्थ, जनरली क्या होता है हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, 90% समय देखेंगे हम, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है, हम जो भी बात करते हैं अपने बारे में सोचते हैं और अपने बारे में बात करते हैं। लेकिन कृष्ण बोलते थोड़ा मेरे बारे में सोच लेना, क्योंकि वो क्या होता है हम लोग अपने बारे में सोच सोच के मरते समय भी कृष्ण के बारे में याद नहीं होगा। तो ये सिस्टम बहुत साइंटिफिक सिस्टम है। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, जो हमारा सही कारण क्या है हमें बंधन में फंसने का, उसका अपोजिट रिएक्शन, उसको बाहर जाने का वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम जब जप करते हैं वो क्या है, वो भी एक तरह का यज्ञ है। जप भी क्या है, यज्ञ है। लेकिन ये यज्ञ में क्या डालते हैं हम लोग, हमारा अहंकार को डालते हैं, वो सबसे बड़ा हमारा बंधन का कारण है। इसलिए कलयुग में ये बहुत इजी मेथड है, क्योंकि कुछ पैसा का खर्चा नहीं है, बड़ा बड़ा यज्ञ करना है तो बहुत पैसा का खर्च है, लेकिन ये यज्ञ के लिए बहुत सस्ता है, हम लोग जप कर सकते हैं। लेकिन जप करते समय भगवान को बोलना है यस बोलना है, हम भगवान को सिर्फ यस बोलना है, भगवान आपका इच्छा हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, मेरा इच्छा कुछ नहीं है। जनरली हमको लगता है मेरा इच्छा, इधर पिंगला बोलते हैं इच्छा को छोड़ दो, लेकिन इतना इजी नहीं है। लेकिन हम बोल रहे ओम बोलते हैं, ओम का अर्थ भी यस है। यस को क्या मतलब है, भगवान आपका इच्छा यस है, मेरा इच्छा नो है। तो एक मुस्लिम मुल्ला बोलते हैं कि हम भगवान नहीं है, इसका क्या प्रूफ है, क्योंकि हमारा इच्छा कभी पूर्ण नहीं होता, कभी भी भगवान का इच्छा पूर्ण होता है, इसलिए वो भगवान है। कभी कभी हमको लगता है मेरा इच्छा पूर्ण हुआ, क्योंकि वो मैच होता है भगवान के, इसलिए हमारा इच्छा पूर्ण होता है, अदरवाइज हमारा इच्छा पूर्ण नहीं होता। तो इधर हम लोग जब जप करते हैं तो हमारे अहंकार को हम लोग यज्ञ में डाल रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी अलग अलग है। तो हम लोग जब कार्य करते हैं, जनरली हमारा टेंडेंसी क्या है, लेने का टेंडेंसी है, देने का नहीं है। सो हम लोग बच्चा पैदा होता है उसका हाथ टाइट रहता है, और जो भी आता है वो जाके मुंह में चला जाता है, हमको इकट्ठा करने का बहुत इच्छा रहता है, और इतना ज्यादा कचरा इकट्ठा करते हैं भी, बचपन से ऐसा ही होता है, बात भी नहीं आता लेकिन सब कुछ मुंह में जाने का इच्छा होता है, मतलब लेने का बहुत इच्छा है, वो हमारा बंधन का कारण है। लेकिन हम देखेंगे बहुत सारे घर में जाएंगे, किसी के घर में इतना सारा कचरा भर के रखते हैं वो लोग, कुछ काम का नहीं रहता है लेकिन पूरा भर के रखते हैं, क्यों, वो एक्चुअली हमारा मेंटेलिटी है, बचपन से मेंटेलिटी। लेकिन भगवान क्या बोल रहे, देने का स्टार्ट करो। अरे मैं कैसे दूंगा, ये तो मैंने कमाया पूरा, भगवान बोलते ठीक है एटलीस्ट थोड़ा दाने, थोड़ा ग्रेन्स डाल दो यज्ञ में, थोड़ा धीरे धीरे आपको देने का इच्छा हो जाएगा। तो देने का हमको स्टार्ट करना चाहिए, तब जाके हमारा जो बंधन है वो धीरे धीरे निकल जाता है, नहीं तो निकलेगा नहीं। तो सारे लोग इकट्ठा करने में, बैंक बैलेंस, अभी इतना इतना प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं, लोगों को लगता है मैं सिक्योर हूँ, मेरा शेल्टर है, देखो इतना प्रॉपर्टी है, कुछ भी होता बच जाऊंगा। लेकिन कुछ भी बचा, कोई भी बच नहीं सकता, ब्रह्मा भी बच नहीं सकते, तो ये क्या बचेंगे? ब्रह्मा का तो पूरा ये पूरा सृष्टि उनका प्रॉपर्टी है, वो भी बचेंगे नहीं तो हम कैसे बचेंगे? तो लोगों को लगता है ये प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ भगवान का चरण हमको बचाएगा। तो लेकिन हम इसको इकट्ठा करते हैं, वो हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन देना एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसे होता है कि अतिथि देवो भवा बोलते हैं, अतिथि को भगवान की तरह ट्रीट करना चाहिए। स्पेशली भारत देश में ऐसा एक लोग को लगता है, अतिथि आया तो उसको, अतिथि मतलब बिना टाइम के आ गया, लेकिन उसको ऐसा ट्रीट करो कि वो खुश हो जाए। जरासंध भी इतना असुर था, जब उसके ब्राह्मण आए, ब्राह्मण के रूप में कृष्ण, वो भी उनको अच्छा ट्रीट किया। और शाम के टाइम पे, सुबह लड़ाई करते थे, शाम के टाइम पे अच्छा से फ्रेंडशिप फ्रेंडली ट्रीट करते थे, क्योंकि अतिथि है, ट्रीट करना चाहिए। तो ये क्यों ट्रीटमेंट होता है? क्योंकि हम भगवान को बोलना चाहते हैं, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, वो भगवान को ट्रीट। और इम्पोर्टेंट है, वृंदावन में इधर कुछ धाम में जाएंगे तो उधर साधु लोगों को भोजन के लिए बुलाते हैं। अभी साधु लोगों को भोजन बुलाते हैं, बुलाने के बाद बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ रहता है, उसको दक्षिणा देना पड़ता है। अभी बहुत सारे साधु लोग एक ही दिन में 5-6 जगह जाते हैं, ज़्यादा खाते नहीं है लेकिन दक्षिणा लेके आते हैं। लेकिन अभी दक्षिणा क्यों देना चाहिए? क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत सारे घर में देखेंगे, कोई साधु को बुलाएंगे, उनका पैर धोएंगे, उसको कुछ मंत्र पढ़ेंगे और उसको खिलाएंगे और इतना सेवा करेंगे, उसका पैर भी मसाज करेंगे, उतना सेवा करने के बाद उसको दक्षिणा देंगे। अभी जनरल लगता है, अरे इतना सेवा करने के बाद वो साधु उनको पैसा देना चाहिए, इतना सेवा लिया तो। लेकिन पैसा क्यों वापस दे रहे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि मैं आपको सेवा करके मुझे आनंद आया, इसलिए मैं उसको आनंद के लिए पेमेंट दे रहा हूँ। जब सेवा करते हैं तो हमको आनंद प्राप्त होना चाहिए। मुझे आनंद दिया आपने, इसलिए मैं आपको दक्षिणा भी वापस दे रहा हूँ। ये एक्चुअली सिस्टम है। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, आप ये सिस्टम सीखो, देने से जो आनंद आता है उसका सीखना शुरू करो। तो फंड रेजिंग का सेशन नहीं है, लेकिन हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं शास्त्र से, कि आप जितना देते हैं उतना आनंद प्राप्त करते हैं। जो ये एक्चुअली कृष्ण सिस्टम बोल रहे हैं, जो सैक्रिफाइस है, यज्ञ है, देने का है। सो जो व्यक्ति देता है, हम लोग बहुत साल पहले वृंदावन यात्रा में परम पूज्य राधानाथ महाराज ने बोला कि वो अभी भी हम लोग करते हैं, उधर के व्रजवासु साधु महंत लोगों को हम एक प्रभुपाद के एक तिरोभाव दिन के एक दिन पहले उनको बुला के सारे लोगों को भंडार भोजन खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। तो और उसके बाद यात्रा में 3-4 दिन ऐसा सर्विस और प्रशासन सर्विंग बहुत सारे डिवोटी ने किया, एक 300-400 डिवोटी ने किया। फिर 3-4 दिन के बाद ऐसा सेवा करने के बाद तो महाराज ने एक लेक्चर लिया। तो महाराज ने बोला, अभी कुछ भक्त लोगों ने सेवा किया, कुछ भक्तों ने बैठ के अच्छा से प्रसाद खाया, अभी ये दोनों में से कौन ज़्यादा खुश है? महाराज ने पूछा, जिन्होंने सर्विंग किया और जिन्होंने प्रसाद पाया। अभी तो मेरे सामने प्लेट है और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो ज़्यादा आनंद आना चाहिए। जो व्यक्ति कर रहा है वो तो कष्ट कर रहा है, इतना बकेट उठाना, और वो रूल था कि बकेट नीचे नहीं रखना चाहिए क्योंकि महंत लोग अफेंड हो जाएंगे, वो बकेट पकड़ेंगे तो पूरा लास्ट तक जाने का और आने का। तो इतना कष्ट करके फिर भी उन्होंने बोला, जो सेवा किया वो लोग ही आनंद प्राप्त किया। तो जब सेवा में जब आनंद आता है, हम लोग सेवा करते 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 वो चेतना में जब आ जाएंगे, जो परफेक्ट स्टेट में कि मैं पूरा भगवान का सेवा करूंगा, तो हम भगवत धाम में भगवान का सेवा कर सकते हैं। अभी क्या है, मेरा इच्छा, मेरा आनंद, मेरा, इस प्रकार से हम फंस जाते हैं। तो देने में आनंद आना चाहिए, जितना देने में आनंद है वो व्यक्ति को हाईएस्ट आनंद आ गया तो अपने आप को पूरा भगवान के चरणों में सौंप देता है। तो इधर बहुत बड़ा मिस्टेक मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या है, कि उनको लगता है जब मेरा इच्छा पूर्ण होगा मैं खुश हो जाऊंगा। तो सिस्टम ऐसा बना के रखते हैं, जस्ट डू इट, करते रहो, जो अच्छा लगा करो। और ये मॉडर्न सिस्टम का बहुत बड़ा सबसे खतरनाक आविष्कार क्या है, टीवी, और उसका बड़ा भाई इंटरनेट। तो ये क्या होगा, इसके वजह से क्या होता है, हमारे इच्छाएं बढ़ जाती हैं। अभी यज्ञ करना चाहिए। हर रोज भक्त लोग भी कभी कभी टीवी रखते हैं, उनको भी लगता है ऐसा सेवा में जरूरत पड़ता है भगवान का, और आल्टर के बाजू में रखते हैं और हर शाम में आग जलाते हैं रिमोट से, और उसमें अपना, उसके वजह से क्या होता है, वो टीवी के वजह से हमारा इच्छाएं और बढ़ते हैं। उसमें एक सुंदर स्त्री आएगा, एक चॉकलेट लेके दिखाएगा, अप्सरा जैसे रहेगा, वो रहती नहीं है लेकिन क्योंकि 3 घंटा मेकअप डालने के बाद ऐसे लगते हैं, और उसको लगता है कि अरे ये अच्छा है, उसको घर वाले अच्छे नहीं लगते उधर का लॉज। और प्रॉब्लम क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट भी ऐसा करते हैं इच्छाएं। तो मेरा एक मित्र था, वो आईएम में पढ़ाई करता था, मैं पूछा आपका एडवर्टाइजमेंट क्या, तो उन्होंने बताया प्रभु जी ये एडवर्टाइजमेंट, वो भी भक्त है, दीक्षित भक्त है, तो न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो उन्होंने बताया प्रभु जी ये सिस्टम इतना खतरनाक सिस्टम क्रिएट करते हैं ये लोग, इतना साइकोलॉजी में के साथ किसी को इच्छा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप एक दुकान में जाते हैं, तो ऐसा बड़ा एक ब्रांडेड दुकान में, तो उधर जाते हैं एक म्यूजिक रहता है, तो किसको आकर्षित करता है, हमारे कानों को, उधर एक अच्छा गंध रहता है, वो हमारा नाक को अट्रैक्ट करता है, और जो प्रेजेंटेशन है देखने का वो भी एकदम बराबर रखते हैं, फिर हमारे हाथ में देते हैं वो प्रोडक्ट, और एक टाई खरीदता है व्यक्ति जाके एक रेमंड शॉप में, ऐसा 2000 का खरीद के आ जाता है, क्योंकि उसने पकड़ा, सुना, देखा, उसको लगता है अरे तो लेना चाहिए, और बाहर आने के बाद वही फुटपाथ में 150 में बिक जाता है वो, लेकिन वो 2000 लेके खरीदता है, क्योंकि क्या किया उसने, उसका इच्छा क्रिएट किया ऐसा। तो सिस्टम ऐसा बनाते कि हमारा इच्छाएं बढ़ते जाएंगे, और लोगों को लगता है मैं आनंद में हूँ, मतलब मेरा इच्छा पूर्ण हुआ तो ही मैं आनंद में हूँ ना, नहीं ऐसा सिस्टम। तो ये एक्चुअली अभी का सिस्टम ऐसा बनाया कि लोगों को बताते हैं कि आप अपना इच्छा बढ़ाते जाओ, इच्छा बढ़ाते जाओ और उसको पूर्ण करते जाओ, वही कुछ का कारण। लेकिन भागवत एग्जाम, तो एक बुद्धिस्ट का जो फिलॉसफी है वो बोलते हैं हमारा सारा दुख का कारण हमारा इच्छा है, और कृष्ण भी बोलते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा, हमारा इच्छा पूर्ण हुआ तो भी हमको प्रॉब्लम है, नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है। इच्छा पूर्ण हुआ तो क्या होता है, इच्छा का आग बढ़ता है, और इतना बढ़ जाता है कि और इच्छा और इच्छा और वो आग हमको निगल लेता है। दो आग है, एक ज्ञान का आग है और एक इच्छा का आग है, किसको बढ़ाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। हम इच्छा को पूर्ण करेंगे महाशनो महापापमा, दूसरा है महापापमा, मतलब हम और भी बुरा कर्म करेंगे। जब हमारा इच्छा पूरा होता है तो हम बुरा कर्म करने में कुछ हिचकिचाते नहीं, हमको लगता है, क्योंकि इसलिए नारद मुनि नलकुर और मणिग्रीव को शाप देते हैं, इसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा है तो ज्यादा इच्छा है और ज्यादा बुरा काम करेगा, ये बोले इसको पेड़ बना दो, कुछ पैसा नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ गलत काम नहीं करेंगे। तो ये एक्चुअली, तो जब हम हमारे इच्छाओं को पूर्ण करने का इस प्रकार से प्रयास करते हैं तो और फंसेंगे, और ये हमारा ज्ञान को भी निगल लेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग हमारे जो कर्म है वो जल जाएंगे। और ये पिंगला का स्टोरी भी बहुत अच्छा है, इसका 2 मिनट चर्चा करेंगे। तो पिंगला एक वेश्या थी, और उसने एक दिन अच्छा अपने आप को सजा के घर के बाहर वेट कर रही थी कब उनके कस्टमर आएंगे, और इतना वेट किया, कोई आ रहा है लेकिन किसी और जा रहा है, कोई आ रहा है, अभी आएगा, पूरा रात गुजर गया, लेकिन इतना दुखी थी। लेकिन जब उसको लगा अरे मैं इच्छा रखा कि ये व्यक्ति आएगा, बोला इसको इच्छा को ही छोड़ देती हूँ तो हो जाएगा, तो उसने इच्छा को जब छोड़ दिया तो आराम से सो गए। तो उसी प्रकार जब हम इच्छा को छोड़ देते हैं तो एक्चुअली आनंद है, इच्छा को पूर्ण करने से आनंद नहीं, इच्छा को छोड़ने में आनंद है, वो एक्चुअली विंगला होती है। और यही गोपियाँ भी बोलते हैं, जब उद्धव आते हैं बोलते हैं कि कृष्ण तो आएंगे नहीं, और कृष्ण को तो हम भूल नहीं सकते, और कब आएंगे, तो सोचते हैं हम कृष्ण के लिए वेट कर रहे हैं, वो इच्छा को छोड़ देंगे हम, जब वो इच्छा को छोड़ देंगे तब हम खुश हो जाएंगे, लेकिन वो कृष्ण को छोड़ नहीं पाते, वो अलग बात है। लेकिन गोपियाँ पिंगला इसका उदाहरण देते हैं। और एक है, जब मुचुकुंद भी बोलते हैं कि हमारा जो दुख का कारण है हमारा इच्छा है, तो इतना आसान है इच्छा को छोड़ना, हमको कन्विक्शन नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रोसेस क्या बोला, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ किया तो क्या होता है, हमको ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान में हमको पहले दो चीजें, एक देने का आदत पड़ेगा, यज्ञ करना मतलब देने का आदत है, और दूसरा क्या है, देने के आदत में उसमें आनंद मिलेगा। देने में जब व्यक्ति को आनंद मिलता है तो अपना चीज को छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं रहता है। अभी बच्चे के हाथ में चाकू है, उसको एप्पल दिया, वो चाकू छोड़ देगा। तो उसी प्रकार हम देने में जब आनंद प्राप्त करते हैं तो अपना चीज छोड़ देते हैं। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन अज्ञान में है, तो इसलिए। और दूसरा क्या है, प्रेम के साथ जब हम भगवान को देना शुरू करते हैं उनके प्रति प्रेम होता है। और एक है होप, होप मतलब आशा। इधर आशा ही परम दुख को बोलते हैं, इच्छा और आशा भी। तो आशा क्या है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन वो एक दिन कभी आता नहीं है। लोग मरते हैं और अगला जन्म आता है, और ट्राई करते हैं और ट्राई करते हैं और मर जाते हैं, पुनरअपि जन्म पुनः। बोलते हैं कि आशा सबसे लास्ट में मरता है, व्यक्ति मरता है लेकिन आशा नहीं मरता। इसलिए वो आशा मर गया तो आदमी सुसाइड करके मर जाएगा पहले, आशा है इसलिए सुसाइड नहीं करता। वो बोले ठीक है फ्यूचर में तो खुश हो जाऊंगा, नहीं तो बहुत लोग सुसाइड कर लेते थे, आशा पकड़ के रखता है उसको, फ्यूचर में हम खुश हो जाएं, तो इसलिए लोग जिंदा है अभी भी। लेकिन इधर आशा ही परम दुखम, उसको छोड़ देना चाहिए। और बोलते हैं कि फर्स्ट बेनिफिट क्या है, यज्ञ करने से हमको ज्ञान मिलता है। सेकंड बेनिफिट क्या है, हम सुख हो जाएंगे। सुख क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा जो मन का दूषण है वो क्लीन हो गया, काम क्रोध क्लीन हो गया, और इसलिए हम सुखी हो जाते हैं और मेटीरियली प्रॉस्पर हो जाते हैं। मतलब व्यक्ति भी भौतिक तरीके से उसको कुछ चाहिए, यज्ञ के रूप में जो आता है वो अच्छा सेफ है, क्योंकि उसको पता है भगवान के कृपा से आया। लेकिन ऐसे कमाता है और जो यज्ञ के भाव में नहीं है कि मुझे अपना कृष्ण के लिए गुरु के लिए करना है, इस भाव से हमने जो भी कार्य नहीं किया वो कर्म बंधन में फंसाता है। कोई भी कार्य हमने किया कि ये कार्य मैं भगवान और गुरु के लिए प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, वो हमको कभी कर्म बंधन में नहीं फंसाएगा। जय श्री सरानंद बिहारी गौरता है गुरंग महाप्रभु की जय। और तीसरा बेनिफिट क्या है, यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो यज्ञ शिष्टामृत बुजो, अमृत बुजो मतलब अमृत क्या होता है, अमृत मतलब शाश्वत रूप से रहना, उसको अमृत बोलते हैं, उसको जो ग्रहण करता है। जब हम इस प्रकार के चेतना में रहते हैं कि हम अपने इच्छाओं को भगवान की इच्छा में, तो हम लोग भगवद्धाम पहुंच सकते हैं। जनरली क्या आया, हमारा आधा जो नेक्स्ट लाइफ है ऑलरेडी हो गया, मतलब अगला जन्म अभी क्या होने वाला ऑलरेडी फिक्स हो गया। क्योंकि ये कैसे होता है, ये वसुदेव बोलते हैं कंस को कि जिस प्रकार से वो कैटरपिलर ऐसा धीरे धीरे चलता है, एक पत्ता से दूसरा पत्ता जाने के लिए वो क्या करता है, पहले अपना आधा बॉडी को दूसरे पत्ते के ऊपर रखता है, फिर धीरे 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 पीछे का बॉडी हिलाता है। तो उसी प्रकार ऑलरेडी हमारा नेक्स्ट लाइफ फिक्स हो गया, अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम उसमें पहुंच रहे हैं। मतलब अभी हमारा क्या चेतना है उसी प्रकार से पहुंच रहे हैं, मतलब अभी क्या इच्छा है उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट लाइफ मिल रहा है। एक व्यक्ति गंगा में डूब रहा था, ऑलमोस्ट मर गया, लेकिन उसको बचा के लेके आ गए, पूरा पानी पी लिया था, उसको दबा दबा के पानी निकाला। उसको बाद में पूछा, आपको कुछ याद आ रहा था क्या, बोला हाँ याद आया। क्या याद आया, वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइजमेंट याद आया, बोले मर्दसन। तो मतलब सोचिए क्या हमारा चेतना में है वो हमारा नेक्स्ट लाइफ है। ऐसे नहीं कि मैं मरते समय हरे कृष्ण बोलेंगे हम भगवत धाम जाएंगे, नहीं, हमारा अभी क्या स्टेट है उसी स्टेट में ट्रांसफर होता है। क्योंकि क्या हमारा सोच है, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, अभी कुछ छोटा बीमारी हुआ तो ही हम लोग भगवान को याद नहीं कर सकते, पहले माला को बाजू में रख के रेस्ट लेते हैं। लेकिन जब मरते समय इतना हमारा शरीर तकलीफ देता है तो कैसे भगवान को याद कर सकते हैं, तो याद नहीं होता है। तो इसलिए हमको प्रैक्टिस इतना अच्छा करना चाहिए ताकि हमारा चेतना में थोड़ा तो भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो अब तो ये एक्चुअली सिस्टम भगवान इधर, तो हमको जो सेवा में मतलब देने में आनंद आता है वो एक्चुअली हायर टेस्ट है। तो उससे बोलते हैं कि वो जो हायर टेस्ट होता है मतलब हायर टेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊंचा स्वाद। जब ऊंचा स्वाद मिलता है तब जाके वो हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। तो अज्ञान में है तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो हमको लगता है प्रॉब्लम क्यों आता है। तो मुचकुंद एक गुफा में सो रहे थे, तो उन्होंने बहुत लड़ाई किया देवताओं के लिए, सोए नहीं थे बहुत दिन। तो देवता ने पूछा क्या चाहिए, बोले मैं सो जाऊंगा लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना, कोई आके डिस्टर्ब किया तो जल जाएगा। तो सो गए, तो फिर लेकिन वो भक्त थे तो कृष्ण का उनका इच्छा था कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण को दर्शन लेने का। तो कृष्ण के मथुरा में काले एक यवन राजा उनके पर आक्रमण करते हैं, तो कृष्ण उनको भगा के वो गुफा में लेके जाते हैं। जब वो काले वन उधर आते हैं तो देखते हैं मुचकुंद सोया, उनको लगा कृष्ण सो गए, तो एक लात मारते हैं। तो फिर मुचकुंद उठते हैं और उनके आंखों से एक आग आता है, वो कालेवन जल जाता है और बोलते हैं कि कालेवन अपने खुद का कर्म से जल गया। तो जलने के बाद फिर कृष्ण का दर्शन होता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है अज्ञान के बारे में, कैसे अज्ञान है हमारा, हम लोग भगवान को भूल गए और क्या कर रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं। सो विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्र छरी उठो जीवा, हम लोग सो गए, जीव जागो जीव जागो। तो सो रहे तो भगवान हमको उठाएंगे कैसे, तो कालेवन के द्वारा एक लात मारा। मतलब वो लात क्या होता है, हमारे जीवन में जो आने वाला कष्ट है, वो कष्ट क्या कर रहा है, हमको लात मार रहा है। उसके वजह से क्या होता है, हम लोग उठते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। तो जब प्रॉब्लम आता है तो क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए भगवान हमको उठाने का प्रयास कर रहे, ताकि हम बैठ के क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अच्छा से जप करेंगे। जब लात मारते हैं भगवान तो वो प्रॉब्लम के रूप में, ताकि हम जाग जाएंगे और समझ जाएंगे, अरे मैं इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ उसको नहीं, अभी भगवान का सेवा करना है, भगवान का नाम जप करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, उठते हैं तो भगवान का दर्शन होता है। तो उसी प्रकार अज्ञान एक्चुअली उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो बीज डाल रहे हैं, कभी कभी लगता है कि भगवान हमको मदद नहीं करते, तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है भगवान मदद नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो व्यक्ति, हम उदाहरण देते हैं कि एक छोटा बच्चा नींद में उसको कुछ बुरा सपना आ गया, उसका शेर उसका पीछे कर रहा है, वो रो रहा है, तो माँ या देख रहा है, वो रो रहा है, शेर करके चिल्ला रहा है। तो बच्चा को लगता है मेरा माँ आना चाहिए नींद में और शेर से मुझे बचाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ क्या करना चाहिए, बच्चे को उठाना चाहिए। तो उसी प्रकार जब हमारे जीवन में समस्या आते हैं तो हमको लगता है भगवान मदद नहीं कर रहे, भगवान मदद कर रहे, कैसे, हमको ज्ञान देके उठाने का प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे यज्ञ करो जप करो, यज्ञ करेंगे जप करेंगे तो हमको जो ज्ञान आता है उससे हम उठ जाएंगे। तब लगे अरे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, मेरे अंदर जो अशुद्धता है वो प्रॉब्लम है, उसको क्लीन करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के हमको एक ही काम है, साफ सफाई करने का, पहले शरीर का फिर उसके बाद हमारा मन का साफ सफाई करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं अभी तक जो बोला उसका एक बार समरी करता हूँ। तो पहले हमने देखा पिंगला का किस प्रकार से इच्छा हमारा दुख का क्या कारण है, तो इच्छा को छोड़ना चाहिए, लेकिन उसको सिस्टम को समझने के लिए कृष्ण और उसका सिस्टम कैसे बताया कि उसका ऑपोजिट क्या है, इच्छा को छोड़ना, सेवा करना, मतलब सैक्रिफाइस करना, मुझे देना। तो सैक्रिफाइस का सॉल्यूशन क्या, मतलब उसका सिस्टम क्या होता है कि हम लोग फंसे हैं, किस में फंसे हैं, एक कर्म बंधन में फंसे हैं। कर्म का बंधन, क्योंकि लोगों ऐसा कुछ बड़े बड़े लोग सोचते हैं कि ये दुनिया का पॉपुलेशन को बहुत कम करके, उसको टाइट करके, कुछ मिलियन रख के, उसको बड़ा हाईवेस में रख के, पूरा कैमरा को रख के, सभी को कंट्रोल करने का, इतना बड़ा असुर लोग रहते हैं कंट्रोल करने का। तो लेकिन सबसे बड़ा जो स्लेवरी है, गुलामी है, किधर है? हमारे हृदय में है। क्या गुलामी है? हमारा कर्म का गुलामी है। इसलिए हमको ऐसे ही कार्य करना है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। और दुख का क्या कारण बताया? कि हम दूषित है शरीर, इसलिए शरीर में प्रॉब्लम है। मन दूषित है इसलिए हमको दुख लगता है। तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का सिस्टम में क्या है? पहले आग रहता है। आग क्या है? ज्ञान है। उसमें बीज क्या डालते हैं? हमारा कर्म को जला देते हैं। और तीसरा क्या डालते हैं? उसमें घी डालते हैं। और घी क्या है? हमारा भक्ति है। जो भी कार्य हम भक्ति के साथ करते हैं, उससे क्या होता है? हमारा ज्ञान का वृद्धिकरण होता है और हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो हमको अपना ड्यूटी करना चाहिए, लेकिन गुरु और कृष्ण का प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और कोई और करेंगे तो और फंस जाएंगे। और उसके बाद हमने चर्चा किया किस प्रकार से इच्छाएं, तो हाँ, सेवा करने में जो आनंद प्राप्त होता है, तो उसमें आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग सेवा में आनंद आएगा, मतलब देने में आनंद आना चाहिए, लेने में नहीं। तो जब देने में आनंद आ जाता है तो क्या होता है? यान्ति ब्रह्म सनातनम, तो हमको अमृत मिलता है, वो शाश्वत रूप में भगवद्धाम भगवान के शरण में जा सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से भगवान मुचुकुंद को उठाते हैं, क्योंकि अज्ञान में है, तो हमारे जो जीवन में जो समस्या आते हैं वो भगवान का उठाने का तरीका है हमको, ताकि हम उनका स्मरण कर सकें और उनका नाम जप करके आनंद रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की।